दिन भर तारीख 19 फरवरी दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन हिंसक हुआ, सेना बुलाई गई।
बीएसएफ ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई।
जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा निचली अदालत में करें अपील। विवेचना में 37 साल पहले ईरान की जबरदस्त क्रांति की चर्चा, जिसने 26 साल से सत्ता पर काबिज शाह को उनके पद से हटाकर मिस्र जाने पर मजबूर किया।
सड़कें खचा खच भरी हुई थी, एक एक इंच करके गाड़ी आगे जा रही थी और खिड़कियों के बीच में से मिठाइयां तरह तरह की फेंक रहे थे सेलिब्रेशन।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। जाट आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के रोहतक में चल रहे आंदोलन के दौरान फायरिंग में आज एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सेना को बुला लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा में कई लोग घायल भी हुए हैं। रोहतक के अतिरिक्त उपायुक्त अमित खत्री ने बीबीसी को बताया कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह के घर पर भी हमला किया और घर के बाहर 3 सरकारी वाहन भी जला दिए। हरियाणा के कई जिलों में जाट समुदाय के लोग 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के नक्सल प्रभावित बुंडू इलाके में माओवादियों के साथ गुरुवार देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। मारे गए माओवादियों में एक महिला भी शामिल है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सभी शवों के साथ 4 राइफलें और भारी मात्रा में गोलियां, हैंड ग्रेनेड और कथित तौर पर लेवी के 6 लाख रुपये बरामद किए हैं। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऑस्ट्रिया ने यूरोपीय संघ की चेतावनी के बावजूद प्रवासियों और शरणार्थियों की संख्या के लिए सीमा तय कर दी है। यूरोपीय संघ के प्रवासी मामलों के कमिश्नर ने ऑस्ट्रिया के इस कदम को यूरोपीय संघ के कानून से असंगत बताया है। ऑस्ट्रिया के नए नियम के मुताबिक एक दिन में दक्षिणी सीमा पर ज्यादा से ज्यादा 80 शरणार्थियों की अर्जियां ही ली जाएंगी, उसके बाद सीमा बंद कर दी जाएगी। ब्रसेल्स में बातचीत के लिए पहुंचे ऑस्ट्रिया के चांसलर वर्नर फेयमैन ने कहा कि उनके देश ने बाकी यूरोपीय देशों के लिए मिसाल पेश की है। अगर हर देश ऑस्ट्रिया की तरह एक संदर्भ सीमा तय कर ले, जैसे ऑस्ट्रिया में जनसंख्या के हिसाब से 37,000 रिश्तेदारों को ही लिया जाएगा, तो हम 20 लाख शरणार्थियों को शरण दे सकते हैं। ये कहने के बजाय कि हम सबको आप हमारे पास भेज दीजिए, इससे बेहतर है कि उदाहरण से ही इसे समझाया जाए। ये थे ऑस्ट्रिया के चांसलर वर्नर फेयमैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लीबिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट पर अमरीकी लड़ाकू विमानों के हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। अमरीकी अधिकारियों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के एक ट्रेनिंग कैंप और ट्यूनिशिया के एक वरिष्ठ चरमपंथी नेता को निशाना बनाया गया। नूरुद्दीन चुचेन नाम का ये चरमपंथी नेता ट्यूनिशिया में पिछले साल हुए 2 चरमपंथी हमलों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। ट्यूनिशिया में पिछले साल चरमपंथी हमले में 30 ब्रितानी नागरिकों की मौत हो गई थी। यूरोपीय संघ में ब्रिटेन की सदस्यता को लेकर नए समझौते पर बातचीत के लिए ब्रसेल्स में बैठक जारी है। इस अहम बैठक में यूरोपीय संघ में ब्रिटेन की सदस्यता की शर्तों में बदलाव पर चर्चा हो रही है। गुरुवार को शुरू हुई बातचीत से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि ब्रिटेन अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। जाटों के आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में पिछले 6 दिनों से जारी आंदोलन आज उग्र हो चला। रोहतक में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच फायरिंग हुई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई घायल हैं। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर भी हमला किया और घर के बाहर मौजूद सरकारी वाहन भी जला दिए। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक YP सिंह ने कहा,
मौम में से किसी व्यक्ति ने एक BSF के जवान पर गोली चलाई। जो BSF के जवान को गोली लगी और BSF ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और कुछ घायल हैं। मॉब ने IG रेजिडेंस पे गेट के ऊपर आग लगा दी, तोड़फोड़ की। उन्होंने बाद में माननीय वित्त मंत्री जी के घर पे आग लगा दी तोड़फोड़ की।
हालांकि आंदोलन रोहतक से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। इस तरह हरियाणा के कई इलाकों में जाट आरक्षण की मांग को लेकर मामला बेहद गर्म है। आरक्षण की मांग कर रहे जाटों ने कई जगह पर सड़कों पर और रेलवे ट्रैक को रोका, कुछ जगहों की हालत खराब है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक वाईपी सिंह बोले,
वो ये सही है कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, हिसार ये जिले हैं जहाँ पे ज्यादा समस्या है, लेकिन बाकी जिलों में भी जैसे जींद, कैथल और पानीपत, इन जिलों में भी समस्या है, लेकिन उसको हम टैकल कर रहे हैं।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और शांति की अपील की। इस पूरे प्रकरण पर बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
जाट आरक्षण की मांग को लेकर भड़के हिंसक आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा है कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा के सत्र में इसको लेकर विधेयक लाना चाहती है। उनका कहना था कि विधेयक का प्रारूप कैसा हो, इस पर सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे गए हैं।
मैंने बताया विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए हमने एजिटेशन के लोगों को भी कहा है कि सुझाव प्रारूप तैयार करिए, विपक्ष भी सुझाव मांगे हैं, उधर से उन्होंने भी लिखित सुझाव देने की बात हमको कही है, लेकिन हम अपनी ओर से सरकार की ओर से उसका प्रारूप तैयार करेंगे और यदि सहमति बनती है तो अगले सत्र में हम लेकर के आएंगे।
मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि जाट आरक्षण पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर करने वाली है।
स्टेट में हर प्रकार के उस आरक्षण को बनाए रखने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग पैरवी कर रहे हैं। SLP भी उस हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई है, नहीं पहले की हुई, जिसका भी अगली सुनवाई कोई तारीख आने पर ही जल्दी होगी।
शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री का कहना था कि चूंकि विपक्षी दलों ने भी अपील जारी की है, उन्हें लगता है कि अब आंदोलन समाप्त हो जाएगा।
हर प्रकार की अपील की है, मैं मानता हूं कि आज की इस अपील के बाद जो कि विपक्षी नेताओं ने भी सहमति की है, सरकार ने भी की है, इसका असर आज होना चाहिए और आज ये एजिटेशन समाप्त होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ।
मगर जाट आरक्षण के आंदोलन से जुड़े एक नेता हवा सिंह सांगवान का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो जाट समुदाय के लोगों का विश्वास हासिल करे।
नेतृत्व किसी का नहीं है, अभी नेतृत्व ही नहीं है, सही बात तो ये है, तो उसको पूरे जाट समाज को ये मैसेज देना बहुत जरूरी हो गया सरकार के लिए और सरकार को ये काम तुरंत करना चाहिए। जितना देर हो रही है उतना ही गड़बड़ हो रही है, लेकिन लोगों को कमेटी से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को चाहिए, जाटों को चाहिए, पूरा विश्वास के साथ कहे सरकार कि भाई हमें जाटों को केंद्र और राज्य में आरक्षण देंगे।
वहीं अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक का आरोप है कि जिस बात की घोषणा मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को की है वो तो उन्होंने पिछले साल भी की थी, मगर इस पर कुछ भी नहीं किया।
कोई कम्युनिटी 15 साल 20 साल 5 साल लगातार आंदोलन कर रही है और उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और जब वो सड़कों पर आती है तब उससे वार्ता शुरू होती है। जो सोल्यूशन आज कह रहे हैं मुख्यमंत्री, ये सोल्यूशन इन्होंने 25 मार्च को वादा किया था, ये मई में निकलता, जून में निकलता, जुलाई में निकलता, एक साल। आप ये लगाइए क्या इतने व्यस्त हैं मुख्यमंत्री कि बुला के वादा करते हैं और लीगल चीज का वादा करते हैं और उसके बाद उस पर राजनीति करने लगे।
यशपाल मलिक ने बताया कि पूरा मामला तब शुरू हुआ जब जाटों को विशेष पिछड़ा वर्ग में रखा गया और फिर उन्हें उस वर्ग से हटा दिया गया, जबकि जिन दूसरी जातियों को आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता रहा।
हुड्डा सरकार ने दो बिल साथ लेके आई, 50% से ज्यादा में EBC लेके आई, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, और SBC स्पेशल बैकवर्ड क्लास। EBC आज भी रिजर्वेशन जारी है और SBC खत्म कर दिया गया, ये अभी पिछले 6 महीने पहले।
हालांकि हरियाणा सरकार ने जाटों से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है, मगर रोहतक के अतिरिक्त आयुक्त अमित खत्री ने BBC को बताया कि आंदोलन पूरी तरह से नेतृत्व विहीन होता जा रहा है।
देखिए मॉब इस तरह जब शहर में घूम रहे तब तो यही लगता है कि थोड़ा लीडरलेस हो गया है, और लीडरलेस जैसे क्राउड का भी डेंजर होता है, उसको देखते हुए हमने आर्मी को बुलाया। फिर करिए बाकी जिलों में जहाँ पे फैली हुई है हिंसा तो वहाँ पे भी करिए और बाकी FIR भी।
बहरहाल हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है कि जाटों का आंदोलन समाप्त हो जाए और प्रदेश में प्रदर्शनों की वजह से प्रभावित हुआ जनजीवन सामान्य हो जाए। हालांकि आंदोलन से जुड़े नेताओं ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
तो जैसा कि आपने सुना, हरियाणा में पिछले 6 दिनों से जारी आंदोलन उग्र हो गया है और आज एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई।
दिन भर शॉर्टवेव 25, 31 और 41 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,595 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत इस मामले की सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कन्हैया की जमानत पर सुनवाई करने का आदेश दिया और कहा कि सुरक्षा के प्रबंध भी किए जाएं। साथ ही हाईकोर्ट से कहा वो जल्द फैसला दे। इस बीच दिल्ली की स्थानीय अदालतों के वकीलों ने जेएनयू में हुई नारेबाजी के खिलाफ एक बड़ा जुलूस निकाला। आज क्या कुछ हुआ, आज की गतिविधियों पर नजर रखी है हमारे सहयोगी जुबैर अहमद ने।
शिक्षा दी जा रही है।
आज दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों वकील,
हमारे देश को तोड़ने की सारी कोशिश जारी है।
पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।
9 फरवरी को जेएनयू में हुए कथित भारत विरोधी नारों के विरोध में वो अपनी नाराजगी जता रहे थे। ये वकील दिल्ली की सभी निचली अदालतों से आए हुए थे। ये सोमवार और बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में हुई हाथापाई के दौरान भी मौजूद थे, लेकिन उनका कहना था कि मीडिया वालों की पिटाई वकीलों ने नहीं की थी, वो बाहर के लोग थे।
ये जो आज यहाँ पर कॉल हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉल हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का मतलब है दिल्ली की सभी 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की है और सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के एडवोकेट हैं यहाँ पर। उस दिन भी वहाँ पर वही थे, लेकिन जिन्होंने वहाँ पर हाथापाई करी वो आउटसाइडर्स थे, वो एडवोकेट नहीं थे। लॉयर्स गुंडे नहीं है, वो अपने कानून के दायरे में रहते हुए करते।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार की जमानत की सुनवाई हाईकोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया की अर्जी को हाईकोर्ट ट्रांसफर करते हुए कहा कि इस स्टेज पर यहां सुनवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि संवैधानिक कोर्ट सुरक्षा नहीं दे सकता। कन्हैया के वकील राजू रामचंद्र से कोर्ट ने पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि निचली अदालत में कन्हैया का विरोध किया जा रहा है और ये कि ट्रायल कोर्ट में कन्हैया और वकील की हिफाजत नहीं की जा सकती। उधर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में साफ कर दिया है कि उन्हें अब कन्हैया कुमार के रिमांड की जरूरत नहीं। जमानत याचिका में कन्हैया की ओर से कहा गया है कि वो बेगुनाह है। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई मारपीट पर टिप्पणी करते हुए उप गृह मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं,
बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर किसी कहीं पे कानून व्यवस्था में कमी है वो कमियां को ठीक करना चाहिए। पुलिस ने अगर कहीं पे कार्रवाई ठीक से नहीं हुआ वो कार्रवाई ठीक से होना चाहिए और हाथापाई नहीं होना चाहिए। कहीं भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आप विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध करते करते में अगर वायलेंस हो जाए तो वो नहीं होना चाहिए। उसमें कोई डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ये माहौल किसने पैदा किया? ये कांग्रेस वाले और कम्युनिस्ट वाले देश की छवि बर्बाद करने के लिए पहले अस्थिरता में बहुत बात कर चुके हैं, इंटॉलरेंट करके हिंदुस्तान को बदनाम कराया।
पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। वो इन दिनों तिहाड़ जेल में कैद है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
और अब आपको बताते हैं कि कल किस विषय पर चर्चा होगी इंडिया बोल में।
बीबीसी इंडिया बोल।
जेएनयू विवाद पर मीडिया में दरार क्यों? राष्ट्रद्रोह बनाम राष्ट्रभक्ति की बहस में पत्रकार एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। एक संपादक दूसरे संपादक को गैर जिम्मेदार बता रहा है। क्या पत्रकारिता के सारे नियम कानून दरकिनार और मर्यादाएं बेमानी हो चुकी हैं? यही है इस बार के इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 20 फरवरी शाम 7:30 बजे मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब कार्यक्रम में वक्त है विवेचना का। 37 साल पहले ईरान में एक जबरदस्त क्रांति हुई जिसने 26 साल से सत्ता पर काबिज शाह मोहम्मद रजा पहलवी को उनके पद से हटाकर मिस्र जाने पर मजबूर किया था। 14 साल से इराक और फ्रांस में निर्वासित जीवन बिता रहे आयतुल्ला खुमैनी ईरान लौटे थे और लाखों लोगों ने उनका स्वागत कर उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता बनाया था। आज की विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं उस ऐतिहासिक घटना को।
1 फरवरी 1979 की शाम को एयर फ्रांस के खास तौर पर चार्टर किए गए बोइंग 747 द मे फ्लावर ने पेरिस के दगाल हवाई अड्डे से तेहरान के लिए टेक ऑफ किया। उस पर सवार था ईरान के शाह के खिलाफ हो रही क्रांति का नायक आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी।
This is the man they call the father of the revolution. And this is the moment that millions in Iran have been waiting for.
16 वर्ष तक पहले इराक और फिर पेरिस में निर्वासन में रहने के बाद खुमैनी अपने वतन लौट रहे थे। विमान पर चढ़ते ही वो विमान के ऊपरी हिस्से पर चले गए। मशहूर ईरानी पत्रकार मोहम्मद हैकाल अपनी किताब द रिटर्न ऑफ आयतुल्ला में लिखते हैं,
जहाज में बैठते ही खुमैनी उसके ऊपरी हिस्से में चले गए। उन्होंने पहले वजू किया, नमाज पढ़ी, थोड़ा सा दही खाया और विमान के फर्श पर तोशक बिछाकर सोने चले गए। विमान के निचले हिस्से में उनका दल और करीब 100 पत्रकारों का समूह बैठा हुआ था। सुबह 5 बजे आयतुल्लाह की आंख खुली। जैसे ही विमान ने ईरान की वायु सीमा में प्रवेश किया, ABC न्यूज़ के संवाददाता पीटर जेनिंग्स ने उनसे पूछा, ईरान में वापस लौटते हुए आपको कैसा लग रहा है? हिची, आयतुल्लाह ने जवाब दिया, यानी कुछ भी नहीं। उनके फारसी अनुवादक सादिक गौतबजादे ने आश्चर्य से पूछा, हिची? खुमैनी ने फिर जोर देकर जवाब दिया, हे चाहे सौसी न द्वारम, यानी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा।
ऊपर से देखने पर मीलों तक लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। शाह की बादशाहत का अंत बहुत तेजी से हुआ। 16 जनवरी 1979 को शाह ने आखिरी बार ईरान से उड़ान भरी। वो मिस्र जा रहे थे और अपना विमान खुद उड़ा रहे थे। जैसे ही शाह के जाने की खबर फैली, पूरा तेहरान सड़कों पर आ गया। उस समय कुलदीप सहदेव तेहरान के भारतीय दूतावास में सेकंड सेक्रेटरी थे।
ये समझिए कि सारा तेहरान सड़कों पर निकल आया, जैसे छुट्टी डिक्लेयर कर दी और सब पार्टी के लिए निकले। और हम भी देखने के लिए, अपनी पत्नी और दोस्त, छोटे बच्चे थे, अपनी गाड़ी में बैठ के निकल पड़े। और सड़कें खचाखच भरी हुई थी, एक एक इंच करके गाड़ी आगे जा रही थी, चारों तरफ लोग, और खिड़कियों को वो कहते थे खोल दीजिए, और खिड़कियों के बीच में से मिठाइयाँ तरह तरह की फेंक रहे थे सेलिब्रेशन के, और स्लोगन था मर्ग बर शाह, डेथ टू द शाह। तो और वो सब कहते थे कि हॉर्न भी आप उसी तरह से बजाइए, मर्ग बर शाह, मर्ग बर शाह।
आयतुल्लाह के विमान में मोहसिन सजेगारा भी सवार थे। वो पेरिस में आयतुल्लाह खुमैनी के लिए काम कर रहे थे। योजना ये थी कि ईरान तभी लौटा जाए जब वहां क्रांति की सफलता के बारे में कोई संदेह न रह जाए। शाह जाते जाते डॉक्टर शाहपुर बख्तियार को ईरान का प्रधानमंत्री बना कर गए थे। मोहसिन को फिक्र थी कि जब खुमैनी ईरान लौटेंगे तो बख्तियार उनके साथ किस तरह पेश आएंगे।
I remember one night we had a tough discussion with him that it might be dangerous. Bakhtiar is still powerful enough to.
मुझे याद है एक रात हमने आयतुल्लाह खुमैनी से तगड़ी बहस की कि उनका ईरान जाना खतरनाक हो सकता है। बख्तियार अभी भी सत्ता में है और वो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। हमें नहीं मालूम कि क्या होने वाला है।
लेकिन आयतुल्लाह को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। विमान में उनके साथ करीब 100 पत्रकार भी चल रहे थे। उन्हें इसलिए लाया गया था कि ईरान की सरकार उनके विमान पर गोलाबारी कर उसे नीचे न गिरा दे।
He said to his son, who you know sat down besides to him, that the name of his son was Ahmad. Said that Ahmad watch that our passports not to be lost.
खुमैनी ने अपने बेटे से, जो कि उनकी बगल में बैठा हुआ था, उसे कहा, इन पासपोर्टों को संभाल कर रखो। उनके बेटे का नाम था अहमद। जब मैंने उनके मुंह से ये वाक्य सुना तो मैंने अपने मन में सोचा कि इस शख्स को ये एहसास ही नहीं है कि वो ईरान का सबसे बड़ा नेता बनने जा रहा है।
उनकी पहली चिंता थी कि उनका जहाज तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर लैंड तो करे। जब वो तेहरान पहुंचे तो उनका जहाज शहर के ऊपर 20 मिनट तक चक्कर लगाता रहा। विमान पर सवार लोगों के दिल की धड़कने बढ़ती जा रही थी। लेकिन अंततः वो समय आया जिसका सबको इंतजार था।
After his long years in exile, the first hesitant steps of Ayatollah Khomeini on Iranian soil. It was a homecoming to end all homecomings, a moment of triumph that had finally been forced on a reluctant government by the stubbornness of this man.
हवाई अड्डे पर स्थिति नियंत्रण के बाहर थी। आयतुल्लाह को नीले और सफेद रंग की कैटलेक कार में बैठाया गया। जैसे ही कार बढ़ी, लोगों का हुजूम उसके पीछे दौड़ा। हवाई अड्डे का टर्मिनल तो खचाखच भरा ही था, बाहर भी लोगों का अथाह सागर।
Nobody could possibly know how many millions lined the route of his 20-mile drive through Tehran, but it could not have been less than 3. They'd come from all over the country to see the man they acknowledge as the only true leader of Iran. And nothing was going to stop them getting even the briefest of glimpses.
आयतुल्लाह खुमैनी को बेहश्ते जहरा कब्रगाह ले जाया जा रहा था, जहां उनको भाषण देना था। मोहसिन सज़ेगारा उनकी कार के ठीक पीछे थे।
I was supposed to be with the journalists with some minibuses to follow the Ayatollah to the cemetery, but it didn't work.
मैं कुछ पत्रकारों के साथ मिनी बस पर सवार था, जो आयतुल्लाह की कार के पीछे चल रही थी, लेकिन उनकी कार आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि लाखों लोग सड़क पर आ गए और उनके पीछे आ रही कारों को एक इंच भी बढ़ने का मौका नहीं मिला।
अंत में लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि खुमैनी को अपनी कार छोड़नी पड़ी और वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर पर बेहश्ते जहरा पहुंचाया गया। मोहसिन और उनके साथ चल रहे पत्रकारों को भी अपनी मिनी बस छोड़नी पड़ी। पत्रकार होटलों की तरफ गए और मोहसिन ने अपने घर का रुख किया।
My father was alone in the house. Everybody, my mother, my sisters, my brothers, they went out to join the other people to say welcome to Ayatollah.
So मेरे पिता अकेले घर में थे। हर कोई मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, सब आयतुल्लाह का स्वागत करने के लिए सड़कों पर निकले हुए थे। मेरे पिता को मेरा राजनीतिक कार्यकर्ता होना पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला और मेरी ओर देखा तो जिंदगी में पहली और आखिरी बार उन्होंने मुझे गले लगाकर प्यार किया। उन्होंने कहा, मुबारक हो मेरे बेटे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग शाह को भगाने में सफल होगे।
23 साल के मोहसिन के लिए ये गर्व का क्षण था। उधर बेहश्ते ज़हरा में खुमैनी ने ऐलान किया,
मैं दौलत तायिन मिकुनम, मैं तो दहन इन दौलत मिजनम, मैं दौलत तायिन मिकुनम।
शाह और उसके द्वारा नियुक्त की गई सरकार गैर कानूनी है। अगर वो अपने आप नहीं हटते तो उन्हें अपराधी समझा जाएगा। मैं इस देश की मदद से नई सरकार की नियुक्ति करूंगा। मैं इस सरकार के दांतों को तोड़ दूंगा।
देश वापस लौटने के चार दिन के भीतर खुमैनी ने मेहंदी बजरगान को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। करीब 5 दिन तक ईरान में सत्ता के 2 केंद्र रहे। आखिरी हथियार के तौर पर बख्तियार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। खुमैनी ने कागज पर अपने हाथ से लिखा, कर्फ्यू का उल्लंघन करो। उस कागज को टेलीविजन सेंटर से बार बार फ्लैश किया गया। लाखों लोग सड़कों पर फिर उतर आए।
They started to attack two police stations, and all that night, that long night, I can say, I was awake. Sometimes I went to the streets.
उन्होंने पुलिस थानों पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरी रात मैं जागता रहा। जब मैं सड़कों पर गया तो मैंने देखा लोग पुलिस थानों के साथ साथ सेना की छावनियों पर भी हमला कर रहे थे और वहां से बंदूकों को लूट रहे थे।
In a day-long orgy of violence, the people seized control from the Shah's government and all it stood for. Army barracks were plundered and guns distributed almost like confetti. They toppled statues of the Shah and sent soldiers and police running for their lives. Gunmen loyal to the Ayatollah Khomeini assaulted the Iranian parliament.
15 फरवरी की रात को वायुसेना कमांडर जनरल अमीर हुसैन रबी को गोली से उड़ा दिया गया। तेहरान के सैनिक गवर्नर जनरल अमीर रहीमी का भी यही हश हुआ, लेकिन रहीमी ने मरते समय शाह जिंदाबाद का नारा लगाया। जनरल नसीरी और जनरल खुसरोदात को भी अलावी स्कूल की छत पर गोली मारी गई।
शुरू से रोज एग्जीक्यूशंस हो रही थी। शाह के जो लोग थे, जो भागे नहीं, उनको रोज अखबार में भरा होता था। दर्जनों लोग की एग्जीक्यूशन की जा रही थी और सबको बिफोर एंड आफ्टर फोटो उनके अखबार में आते थे। खुवैदा जो प्रधानमंत्री थे, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड। और खालिद बारी फॉरेन मिनिस्टर, फिर जो लोकल कमांडर थे आर्मी के, उनको तो इस तरह के मेरा ख्याल कुछ 300 लोग तो मारे गए। तो ये तो पहले कुछ हफ्तों में, और हम सब उनको जानते थे, तो काफी जरा ग्लूमी सा सिचुएशन था।
कम लोगों को पता है कि खुमैनी के दादा बाराबंकी के पास कुंतूर गांव के रहने वाले थे, जो सालों पहले इराक जाकर बस गए थे। तत्कालीन भारत सरकार ने, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, खुमैनी के इस भारत संबंध को भुनाना चाहा। आनन फानन में पूर्व मंत्री अशोक मेहता के नेतृत्व में खुमैनी से मिलने के लिए एक सद्भावना प्रतिनिधिमंडल ईरान भेजा गया, जिसमें लखनऊ के शिया धर्मगुरु आगा रूही अबाकदी भी थे, मशहूर पत्रकार सईद नकवी कहते हैं।
अटल जी ने मुझसे बात की, कहने लगे भाई क्या करें, कोई कॉन्टैक्ट है? हमने कहा था आपको ये मालूम है कि आयतुल्लाह खुमैनी इनके खानदान वाले एक जगह है कुंतूर, जो कि एक शियों का बहुत बड़ा मरकज़ है लखनऊ से 20-30 किलोमीटर दूर, ये वहाँ के ख़ानदान हैं, कोई इनके एतराफ़ में कोई इनके घर वाला है? मैंने कहा आगा रूही अबकाती ये मुल्ला है वहाँ का, ही इज़ ए रिलेटिव ऑफ इमाम खुमैनी। बुलाया गया, अटल जी ने फौरन ना आओ देखा ना ताओ एक डेलीगेशन तैयार किया, उस डेलीगेशन के हेड बने अशोक मेहता, सोशलिस्ट लीडर तैयब जी उसमें लाए गए, और ये इन दोनों की मातहती में आगा रूही अबकाती ये डेलीगेशन पहुंचा तेहरान। आयतुल्लाह खुमैनी से बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेस मिल गया था, बैक चैनल क्या था, बैक चैनल का बाप था ये तो। अब जनाब जब वहाँ पहुँचे जुमरान जहाँ आयतुल्लाह रहते थे, तो दरवाजे पे आयतुल्लाह खुमैनी ने इशारा किया कि रुको, और फिर इससे कहा कि तुम आगे आओ आगारूही से। आगारूही आगे आए और उसके बाद उन्होंने साहब बज़ुबान फ़ारसी वो उनको गिन गिन के सुनाई कि लोग सब हक्का बक्का, आगारूही रोने लगे कहें और ये लोग उनको गले लगाएं कि क्यों, कि हाँ तुमसे किसने कह दिया कि तुम तो हमारे रिश्तेदार हो, तुम कौन होते हो हमारे इस रेवोल्यूशन को इस तरह से मार्केट करने वाले, लेने के देने हो गए। अब जनाब ये क्यों हुआ? तब इनका रेवोल्यूशन मासूम था, कमज़ोर था, वो समझते थे कि लोग यहाँ ईरानियन नेशनलिज्म जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उनका सबसे बड़ा लीडर किसी और देश से ओरिजिनेट किया है।
ईरान में स्थायित्व आते आते 6 महीने लग गए। जैसे ही खुमैनी ने शतरंज की बिसात पर अपने विरोधी के आखिरी प्यादे का सफाया किया, उनके मुंह से निकला शाह मात। उन्होंने 19 साल पहले शाह के खिलाफ शुरू की गई लड़ाई जीत ली थी। ईरान उनका था, उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं था। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
तो 37 साल पहले ईरान में जो जबरदस्त क्रांति हुई थी उसको सुना रहे थे हमारे सहयोगी रेहान फजल। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
अभी अभी खबर आ रही है कि जाट आरक्षण के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के भिवानी और रोहतक में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज जाट आरक्षण की मांग को लेकर रोहतक में आंदोलन उग्र हो गया और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो फायरिंग हुई उसमें, और 8 जिलों में सेना तैनात की गई है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा में कई लोग घायल भी हुए हैं। रोहतक के अतिरिक्त उपायुक्त अमित खत्री ने बीबीसी को बताया कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह के घर पर भी हमला किया और घर के बाहर 3 सरकारी वाहन भी चला दिए। हरियाणा के कई जिलों में जाट समुदाय के लोग 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के नक्सल प्रभावित बुंडू इलाके में माओवादियों के साथ कल देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। मारे गए माओवादियों में एक महिला भी शामिल है। ऑस्ट्रिया ने यूरोपीय संघ की चेतावनी के बावजूद प्रवासियों और शरणार्थियों की संख्या के लिए एक सीमा तय कर दी है। यूरोपीय संघ के प्रवासी मामलों के कमिश्नर ने ऑस्ट्रिया के इस कदम को यूरोपीय संघ के कानून से असंगत बताया है। लीबिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट पर अमरीकी लड़ाकू विमानों के हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। अमरीकी अधिकारियों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के एक ट्रेनिंग कैंप पर निशाना साधा गया। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। 1.5 घंटे बाद 9:30 बजे घटना चक्र लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।